देखते हैं इसकी तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने लास्ट टाइम कुरान करीम की अहमियत को जाना और हमने मुख्तसरन हमने ये भी देखा है कि किस तरह से अगर कहफ वाले गार के अंदर, यानी वो किस तरह से वो लोग गार में पना लेते हैं और उसके बाद अपने ईमान को बचाने के लिए कितनी बड़ी वो कुर्बानी देते हैं, यानी ईमान उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। हमने ये भी देखा कि ये सूरत किस तरह से अहमियत रखती है दौरे फितन में, फितनों के दौर में इस सूरत से हमें क्या रहनुमाई मिलती है, ये भी हमने इस सूरत में अभी तक देखा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ हमें जगह जगह पर जहाँ आयात ऐसी हैं कि जो एक एक आयत के अंदर सबक है, हमें एक एक आयत के अंदर ये बताया गया है कि किस तरह इंसान को चलना है अपनी जिंदगी में अपने ईमान को लेकर। इतनी रहनुमाई इस सूरत में मिलती है, लेकिन उन्हीं के लिए जो इसको समझ पाए, जो इसको देखें कि ये सूरत किस तरह से हमें जैसे जिंदगी के रास्ते में ना चला रही है। और अनफॉर्चुनेटली हम में से अक्सर लोग इसको सिर्फ जुमे के दिन पढ़ने का तो एहतमाम करते हैं, इसको समझने का नहीं करते। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि अगर मसलन है कि किसी बंदे को कहा जाए कि आप ये रेसिपी याद कर लीजिए, तो वो इसलिए याद कराई जाए ताकि जब आप पकाने लगे तो आपको कोई मुश्किल ना हो, आप कोई चीज मिस ना कर दें। अगर वो रेसिपी याद तो कर ले, लेकिन पकाना ही भूल जाए या पकाते वक्त उसको याद ही ना रखे, तो क्या फायदा। इसी तरह आप इसको पढ़ भी लें, अपना पढ़ने का बेशक सवाब और उसकी बरकात जरूर है, लेकिन आपको रहनुमाई फिर कहाँ से मिलेगी। ये कुरान रहनुमाई देने के लिए, ये कुरान रास्ता दिखाने के लिए, और रास्ता तभी दिख सकता है जब हम समझें कि राह है क्या। तो हमने अभी तक जो फर्स्ट स्टोरी इस सूरत में मैंने आपको बताया था, चार किस्से हैं, उनमें से पहले किस्से की सिर्फ तमहीद अभी पढ़ी है। इसका अभी डिटेल आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस्सा किस तरह सिग्निफिकेंट है हमारी जिंदगियों के साथ। बहुत जरूरी है ये जानना क्या चीज अल्लाह ताला हमें समझाना चाह रहा है इस सूरत में और किस तरह ये हमारी हिफाजत कर सकती है। आपको पता है जैसे कि ये नूर बन जाएगी हमारे लिए कयामत के दिन भी, और ये इतना इंसान को नूर देगी इतना कि यहाँ से लेके जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहां से लेके मक्का तक हरम तक आपको नूर ही नूर मिल जाता है अगर आप जुमे के दिन पढ़ें तो। इतना दज्जाल आएगा तब तो पढ़नी ही है पहली 10 आयात, लेकिन उसके अलावा हर जुमे को भी पढ़नी, क्योंकि सिर्फ फितना ही दज्जाल एक फितना नहीं है। हम सब इस चीज को समझते हैं और मानते हैं कि हम इतने फितने के दौर से गुजर रहे हैं। फितना दज्जाल जो आना है वो तो बहुत एक बड़ी चीज है। उससे पहले जितने फितने हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जितने फितने हम आज के दौर के अंदर देख रहे हैं, वो भी कोई कम नहीं है। हर फितने पे इंसान सोचता है, जैसे हदीस में आता है कि इससे बड़ा फितना क्या होगा, तो मोमिन सोचेगा इससे बड़ा क्या हो सकता है, उससे भी बड़ा आ जाएगा, फिर वो सोचेगा इससे बड़ा और क्या हो सकता है, उससे भी बड़ा आ जाएगा, फिर इसी तरह हर फितना अगले से बड़ा होगा, जो पहले गुजर गया ना उससे ज्यादा ही बढ़ के होगा। तो जो आने वाला दौर है वो मजीद फितनों को लेकर आएगा, ऐसे नहीं होगा कि चीजें कम हो जाएंगी, क्योंकि हम कयामत की तरफ मूव कर रहे हैं, तेजी से मूव कर रहे हैं। और जो कयामत से पहले का दौर है वो सिवाय फितनों के उसमें और कुछ नहीं है, और ये आप कयामत की निशानियों में भी पढ़ सकते हैं। लिहाजा बहुत जरूरी है कि हम में से हर एक समझे कि ये सूरत हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है। तो आज हम देखते हैं इस सूरत में जो दूसरा हमारा सबक है कि हमें क्या समझाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو ان کی خبر حق کے ساتھ۔ جہاں پر حق کا لفظ آ جائے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی ایبسولیوٹ ٹروتھ، بالکل سچی بات، بالکل سچی خبر، اس کی تفصیل ہم آپ کو بتاتے ہیں، نہیں اس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اور عربک میں جب جملے کی ترکیب بدل جاتی ہے نا، یعنی ناؤن پہلے نہیں آتا، پہلے فیل آتا ہے، لیکن اگر ناؤن پہلے آ جائے، جیسے یہاں پہ اسم پہلے آیا، ناؤن پہلے آیا، نحنو پہلے آیا، پھر فیل آیا، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، تو جب اس طرح ترکیب بدلتی ہے جملے کی تو اس میں اختصاص آ جاتا ہے، یعنی خاص اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا ان نوجوانوں کے قصوں کی حقیقت کو۔ اس لیے اگر کوئی بھی کچھ کہتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، کیونکہ آپ کو کئی باتیں اہل کتاب سے بھی ملیں گی، وہ بھی ٹیل آف دا سیون سلیپرز یہ کہتے ہیں کہ سات سونے والوں کا قصہ ان کے اندر بھی موجود ہے، وہ آپ کو کوئی باتیں بتاتے ہیں تو اگر وہ قرآن سے کنٹروڈکٹ کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حقیقت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہود سمجھتے تھے نا کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں بڑا علم ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق بات بتا رہا ہے، اتنی باتیں ان کو بھی نہیں پتا، یا ان کے پاس بھی وہ سچائی اور وہ حقیقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے۔ اور کسی بھی قصے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سچا ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، وہ ایلیکوینٹ بھی ہو، فصاحت بھی ہو اس میں، اور اس میں دوسرے کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہو۔ اور اس قصے میں یہ ساری ہی باتیں، اس میں فائدہ بھی ہے، سبق بھی ہے رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے، اس میں ایبسولیوٹ سچائی ہے۔ آپ دیکھیں آج کتنے ہی قصے ہیں، بڑے سبق آموز ہوں گے لیکن خود ہی بنائے ہوئے ہیں، کوئی سچائی نہیں، کوئی حقیقت سے تعلق نہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں بڑا سبق ملتا ہے، لیکن ان میں سچائی نہیں ہوتی۔ پھر فصاحت، فصاحت و بلاغت اس کی دیکھیں، تو اس میں یہ حق کے ساتھ ہے۔ اور نحنو آیا، نحنو تو ہے ہم، جبکہ اللہ تو ایک ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ کئی مشنریز جو ہے اس چیز پہ بڑا کام کرتے ہیں اور بڑا اس چیز کو اور اس ایشو کو بناتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے تو قرآن میں ہم لکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں ایک ہے، تو پھر ہم کا کیوں لفظ آیا؟ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں ہم کا لفظ جب آتا ہے نا تو وہ بزرگی کو ظاہر کرتا ہے، جس کو ہم انگلش میں بھی یہ بولتے ہیں رویل وی یا میجسٹک وی، کوئین آف انگلینڈ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لیے وی کا لفظ کہتی ہے، ہم کا لفظ کہتی ہے، میں کا نہیں کہتی۔ تو اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کلام ہے۔ اچھا پھر انم فتیہ، تو بے شک وہ تھے ایک فتیہ۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہم نے اس کے بالکل ایک تھوڑی سی تمہید ہی دیکھی ہے، ہم اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکے تھے، نوجوان لڑکے تھے، آمنوا بربہم، جو ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے تھے، انہوں نے اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے رب کو پہچانا جس ماحول کے اندر ہر طرف شرک تھا، کفر تھا، گمراہی کے اندھیرے تھے، اس میں انہوں نے اللہ پر ایمان کو رکھا، اور یہ چھوٹی سی جماعت تھی اور یوتھ تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یوتھ میں کوئی خیر نہیں ہوتی، حالانکہ اگر یوتھ اللہ کی طرف آ جائے نا، نوجوان آ جائے، تو وہ کام کر کے دکھاتے ہیں جو بڑے بوڑھے نہیں کر سکتے۔ اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ جس کو بھی اللہ ہدایت دے دے، یا آگے بھی ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف جو قدم بڑھاتا ہے نا، एक कदम भी बढ़ाए तो अल्लाह ताला इसकी तरफ 10 कदम आता है। तो आप सल्लम की हदीस है ये, और आपने फरमाया कि अल्लाह की तरफ जो चल के आता है अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ के आता है, एक कदम आता है अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम आता है। तो ये जो ईमान है ना इंसान का, ये भी एक उस पे नहीं रहता, स्टेगनेंट नहीं है, कोई जामिद चीज नहीं है, ईमान भी घटता और बढ़ता है। कि हिदायत बड़ी ना, हिदायत ईमान के साथ बढ़ती है, क्योंकि उन्होंने भी दुआ की थी ना, हमने देखा है कि उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह हमें हमारे मामले में रोशादा रहनुमाई कर दे, हिदायत दे दे। तो उन्होंने ये दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनको रहनुमाई दी और उनकी हिदायत बढ़ती गई। जैसे जैसे इंसान के नेक आमाल बढ़ते हैं, याद रखें जितनी आप नेकियां करेंगे ना आपकी हिदायत बढ़ती जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं ना अल्लाह मेरी भी हिदायत बढ़ा दे, तो नेकियों में जोर लगाना शुरू कर दे, ईमान बढ़ेगा उससे हिदायत बढ़ेगी। और ये देखें आप यहाँ पे सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ये भी तो फरमा सकता था, इन्नहुम आमनू बिरब्बिहिम, कोई भी फर्क नहीं पड़ना था इससे तर्जुमे में कि वो लोग थे कि जो ईमान लाए अपने रब पर, मतलब फितियातुन, इससे अल्लाह ताला की अप्रिसिएशन उनके लिए समझें कि दे वर यंग। अल्लाह ताला को ना जवानी का इबादत गुजार बड़ा पसंद है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्लाह ताला के अर्श का साया उसको मिलेगा जो जवानी में इबादत करता है। ये नहीं मैं कह रही कि अगर आप बूढ़े हो गए हैं, उम्र रसीदा है, तो आप अब होप ना रखें या आप गिव अप कर दें या आप सोचें कि अब क्या फायदा, मेरी तो जवानी ऐसे गुजर गई। नहीं, अल्लाह ताला ने अभी भी हिदायत दे दिया तो शुक्र है उसका, इससे पहले कि मौत आ जाती। लेकिन स्टिल अप्रिसिएशन उनके लिए है ज्यादा। देखिए अल्लाह ताला कभी भी आपके लिए अपने डोर्स बंद नहीं करता। आप बूढ़े होके भी आएंगे ना तो लोग आपको कहेंगे 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। हाँ? तो लेकिन अल्लाह ताला कभी नहीं कहता। आप बूढ़े होके भी आते हैं तो अल्लाह ताला उसी तरह आपको एम्ब्रेस करता है। मगर जो यंग एज के अंदर अल्लाह की तरफ आ जाए ना, जिस एज के अंदर हम समझते हैं अभी तो फन करने के दिन है, अभी तो हमारे इंजॉयमेंट के दिन है, अभी तो मेरी जिंदगी पड़ी भी है, कर लेंगे अल्लाह अल्लाह, बहुत टाइम पड़ा, उस वक्त जो पलट आए अपने रब की तरफ, अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। मैं इसलिए इस चीज को एम्फसाइज करती हूँ कि आप में जो लोग यंग बैठे हुए हैं वो ये समझें कि अल्लाह ताला के नजदीक उनकी कितनी कदरों कीमत है। किसी को होपलेस करने के लिए नहीं कर रही, इसलिए कि आप लोग ये समझें कि अल्लाह ताला ने कितनी उनकी तारीफ की है। पहले भी आया था ना फितिया, नंबर 10 आया, अब फिर आया फितिया, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि आप ये समझें कि जवानी का अल्लाह की तरफ, जवान का अल्लाह की तरफ आना अल्लाह ताला को कितना महबूब है। लिहाजा हम यूथ को हर वक्त बैशिंग ना करते रहें कि आप किसी काम के नहीं, आप तो कुछ भी नहीं, आप तो ये तो ऐसे हैं ऐसे हैं। नहीं, उनको उभारें, उनको बताएं कि अल्लाह ताला को उनकी ये एज कितनी पसंद है अगर वो इस वक्त अल्लाह के पास आते। देखिए जब सारी दुनिया आपको ठुकरा दे और एक तरफ बिठा दे, हमेशा मैं आपको ये बात बताती रहती हूँ, जब सारी दुनिया ही आपसे मुंह फेर ले, किसी के पास आपके लिए टाइम ही नहीं है, बात करने का भी किसी के पास टाइम नहीं है आपके लिए, तब आप कहते हैं और कुछ नहीं, अब अल्लाह से ही लॉ लगा लो, अब तो मेरा कोई रह ही नहीं गया। ठीक है, आपने किया, अच्छा किया, वो भी जिसको अल्लाह तौफीक दे दे, वरना कई तो बूढ़े भी इस तरफ नहीं आते, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो वो इंसान है जिसको सारी दुनिया हाथों हाथ लेती है, अब वो पता है ना जॉब्स में भी यंग को वो प्रायोरिटी देते हैं, बूढ़ों को नहीं, जो कोई रिटायरमेंट के करीब हो उसको नहीं हायर किया जाता। जितनी आपकी उम्र बढ़ती है तो जॉब पाना मुश्किल हो जाता है, यंग के लिए बहुत आसान होता है, क्यों हाथों हाथ लेते हैं। दुनिया में, दुनिया भी आपका जवानी का पीरियड लेना चाहती है, क्योंकि दुनिया को भी पता है कि जितने आप इस वक्त एनर्जेटिक हैं, जितने आपके पास इतनी हिम्मत, जोश, वलवला और आगे बढ़ने की उमंग जो यंग में होती है, वो ओल्ड में नहीं होती। तो एक तरफ याद रखिएगा, ये दुनिया आपकी जवानी लेना चाहती है, और एक तरफ अल्लाह ताला अप्रिशिएट करने वाला है आपकी जवानी। किसको अपनी जवानी देंगे? एक अल्लाह आपसे सौदा करना चाहता है और एक दुनिया आपसे सौदा करना चाहती है। ये नहीं कह रही कि दुनिया को छोड़ दें, एक तरफ बैठ जाएं और अल्लाह अल्लाह करें, मगर यूथ अपना वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाए, यूथ इस तरफ आए, उनके लिए बड़ा बड़ा अल्लाह के यहाँ अजर है। और जितना अल्लाह ताला कदरदान है ना, जिसका नाम अशकूर है, कदरदान, उतना आपकी इस जवानी की कोई कदर नहीं करेगा। इस जवानी को सारा का सारा भी दे दोगे ना इनके लिए, घुला भी दोगे, सख्त मेहनत कर करके अपना पसीना नचोड़ दोगे इनके लिए ना, तब भी ये आपकी कदर नहीं करेंगे। चंद टके ही दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं, मगर जो अल्लाह ताला देगा ना, उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते आप। तो अपनी जवानियां दें अल्लाह को। कई लोग जब उनको इतना दुख होता है कि कुरान की तरफ बुलाते हैं ना, तो उनके रवैये ऐसे होते हैं कि यानी वो अपने जुबाने हाल से कह रहे होते हैं, मुंह से शायद ना भी बोलें, बस तो मुंह से भी कह देते हैं, लेकिन वो अपने जुबाने हाल से बोल रहे होते हैं कि अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है, अभी हमारी जवानी है ना, तो अभी हमारी और बहुत सारी काम है, आप हमें किन चक्करों में डाल रहे हैं, अभी हमें एनर्जेटिक है, अभी हमें बड़ा कुछ और करना है, अभी कहाँ हम इसमें पड़ जाएं, कहाँ हम अल्लाह की तरफ आ जाएं। नहीं, ये भी तो फितिया थे ना। तो वो जो ईमान लाए अपने रब की ऊपर और अल्लाह ने उनकी हिदायत बढ़ा दी, इससे पता चलता है हिदायत अल्लाह के हाथ में, ये आगे भी आएगा, अल्लाह चाहे तो किसी की हिदायत बढ़ा दे, चाहे तो घटा दे, इरादा अल्लाह का है। लेकिन जब इंसान इरादा कर लेता कि मैंने जम जाना है दीन पे, अल्लाह ताला फिर उसकी रहनुमाई करता है, उसको गाइड करता है। हिदायत क्या है? गाइडेंस, अल्लाह ताला गाइड करता है। देखिए, असहाबे काव को थोड़ी पता था हमने किधर जाना है, हम क्या करें, हम किधर रहेंगे, हम कौन से गार में जाएं, अल्लाह ने उनकी हिदायत बढ़ा दी, अल्लाह ने दिखाया ना। इस दुनिया में भी अल्लाह रहनुमाई करता है और आखिरत में भी इसका अजर देगा। तो हिदायत के लिए हमारे अंदर तड़प होनी चाहिए। हिदायत उतनी मिलेगी जितनी आपके अंदर तड़प है, जितनी आप चाहते हैं, जितनी आप इसके लिए कोशिश करते हैं। जाहिर है, जब इंसान किसी चीज के लिए को बहुत चाहता है ना, तो उसके लिए कोशिश भी करता है। जाहिर है, ऐसे तो नहीं होता मेरी चाहत बहुत है, वो तो झूठ बात होती है, मेरी चाहत बहुत है, बस अल्लाह ही नहीं करता। कुछ लोग जैसे कह देते हैं, हम तो बहुत चाहते हैं लेकिन बस अल्लाह जब चाहेगा तो फिर ही होगा, हमारी क्या फर्क पड़ता है, हम बस दुआ करें जी आप। इसका मतलब आपकी चाहत नहीं है ना, आपकी चाहत नहीं है। अगर चाहत होगी ना, तो अल्लाह ताला जरूर दरवाजे खोलेगा। देखिए, याद रखिए कि आपको चाहत दुनिया की हो, कोई पता नहीं आपको मिल सकती है या नहीं मिलती, अल्लाह ताला ने जितना लिख दिया उतनी ही मिलेगी। मगर हिदायत जितनी आप इसके लिए कोशिश करेंगे, जितनी आप इसके लिए तड़प रखेंगे, अल्लाह ताला देगा। وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، कितनी प्यारी आयत है। रबतना अला कुलूबिहिम इद काम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनका दिल बांध दिया जब वो खड़े हुए। उनका दिल बांध दिया मतलब क्या? उनको मजबूत कर दिया, उनको जमा दिया। ठीक है, उनको जमा दिया, उनकी हिदायत अल्लाह ने बढ़ा दी थी ना, तो उनको अल्लाह ने फिर उनके दिल को भी बांध दिया। तो पहली चीज तो यही हो गई ना उनके लिए, जब हिदायत आती है तो दिल जम जाता है, बंद जाता है। अच्छा, एक बात और समझ ले, इब्नुल कय्यम फरमाते हैं कि हर दिन इंसान बढ़ रहा होता है, या तो अल्लाह से करीब हो रहा होता है या उससे दूर हो रहा होता है। हर दिन आप मूव कर रहे हैं, हर दिन मूवमेंट है, हरकत है, आप बढ़ रहे हैं या तो अल्लाह ताला की तरफ को या उससे दूर। हमें भी देखना चाहिए कि हम बढ़ रहे हैं उसकी जानिब या उससे दूर। ठीक है, तो वो लोग जो थे उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ कदम बढ़ाया था, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे छोड़ नहीं देता। याद रखिए, अल्लाह नहीं छोड़ता। ये आप दुनिया वाला मामला ना समझे। यहाँ पे तो जब इंसान मुसीबत में आता है ना, तो किसी ने क्या खूब बात कही, उसने कहा जब मुसीबत आती है तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, लेकिन अल्लाह ताला नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला दुनिया वालों की तरह नहीं है। ये आपके अच्छे वक्त में आपके साथ होते हैं। जब किसी इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है ना, तो ढूंढने से भी नहीं कोई मिलता, कहीं गायब ही हो जाते हैं। आपके पास सब अच्छा चल रहा है, आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, पैसा आपके पास है, बहुत लोग आपके घर जमा हो जाएंगे। बात तो तब है कि आपके ऊपर खुदा ना हंसता कोई मुश्किल आए, तो तब आपके साथ कितने खड़े होते हैं ये बताइए। लेकिन अल्लाह ताला के साथ ऐसा मामला नहीं। जिस वक्त इंसान उसकी तरफ बढ़ता है और उसको थाम लेता है ना, तो वो मुश्किल वक्त में थाम लेता है, वो मुश्किल वक्त में इंसान को मजबूत कर देता है। तो रबत कहते हैं स्ट्रांग कर देने को, असल में गिरा लगाने को कहते हैं। गिरा जब आप लगाते हैं तो चीज मजबूत हो जाती है ना। तो आपने दो चीजों में गिरा लगाई, अब वो आप खींच के देखते हैं वो मजबूत हो गई। तो दिल को बांध देना, आपको पता है कुराने पाक में ये लफ्ज और भी कई जगह आता है, आपने पढ़ा होगा बदर में, सूरह अनफाल में है ना, और यर बिताला कुलूबी को, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को बांध दिया। जो सहाबा कराम उस वक्त उनके दिल उड़ रहे थे कि ये क्या मतलब, इतना बड़ा लश्कर हम इतने कम क्या होगा। सूरह कसस में मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल उड़ रहा था, बच्चे को आए इसमें डाल दिया दरिया के अंदर, अब होगा क्या। तो अल्लाह ताला दिल बांध देता है। ये दिल ना अल्लाह की दो करीम उंगलियों के दरमियान है, जिधर चाहे दिलों को फेर दे। आप खुद सोचें कि वो ऐसे लड़के थे, सुभान अल्लाह, आसान बात नहीं है। देखिए ये रियलिटी है, ये हम ऐसी कहानियां नहीं पढ़ रहे, दिस हैपन्ड। और आप कोई मूवी देख लेते ना, तो आप कितना दिल के ऊपर असर हो जाता है, और वो तो झूठी बातें होती हैं। ये सोचें कि कुछ लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, मे बी टीनेजर्स हैं, अपने घरों से निकल गए, उनके पीछे यानी उनको डेथ सेंटेंस, मौत का फैसला उनके लिए हो चुका है, और अब वो निकले हैं घर से, उनको ये कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या होगा क्या नहीं। कितना दिल डरता है ना, कितना दिल परेशान होता है। और अभी तो यहां पर जिस वक्त के पता चला है, इस आयत के अंदर तो हमें ये पता चल रहा है कि जब ये पता चला ना कि ये तो हमारे दीन के ऊपर ही नहीं है, ये तो कुछ और ही मानते हैं, तो लोग वहां से बादशाह तक पहुंच गए, उसने कहा मेरे पास उनको हाजिर करो। उस जमाने में बादशाह जो फैसला कर देता था वही कोर्ट होती थी, समझ लें वो जज भी वही है, वो जो फैसला कर देगा वही होगा। तो अब बादशाह की अदालत में इज कामू, जब वो खड़े हो गए, नॉट ओनली कि फिजिकली खड़े हो गए, फिजिकली तो खड़े हुए ही बादशाह की कोर्ट में जाके, मगर उन्होंने स्टैंड ले लिया अपनी कौम के मुकाबले में। बादशाह का भी वही दीन, कौम का भी वही दीन, घर वालों का भी वही दीन, फ्रेंड्स का भी वही दीन, जितना सर्कल है सबका एक ही दीन है, सभी शिर्क पे हैं, और इन्होंने स्टैंड ले लिया इज काम हूं। तो तब अल्लाह ताला ने, ये देखिए यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है, कि जब वो खड़े हुए तब अल्लाह ने उनका दिल बांध दिया। मगर दिल का बांधना पहले मेंशन किया गया है और खड़े होना बाद में किया गया है। पता चलता है कि अल्लाह ताला की कितनी शाने करीमी है ना, कि उसने दिल को बांध दिया उनके, मगर उस वक्त बांधा था जब उन्होंने स्टैंड लिया। मैंने आपको क्या बताया कि आप अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाते हैं तब अल्लाह ताला आपकी तरफ कदम बढ़ाता है। समझ आई? तो इनिशिएटिव आपको लेना है, आपको दिखाना है, फिर अल्लाह पकड़ता है ना, फिर अल्लाह ताला थाम लेता है। आप तो कुछ करने को तैयार ना हो तो अल्लाह ताला कैसे आपको जमाएगा, क्यों जमाएगा? तो उन्होंने जब स्टैंड लिया अपनी पूरी कौम के खिलाफ, उन्होंने कहा कि हम नहीं इसकी इबादत करते। अब वो जैसे आप ये थोड़ी सी बात को समझिए कि ये कोई पैगंबर नहीं है, ठीक है? आपने इससे पहले एक पैगंबर का किस्सा पढ़ा है जो बादशाह वक्त के सामने खड़े हुए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मगर वो अल्लाह के खलील थे, उनके पास वही आती थी, वो अल्लाह के नबी थे। ये कौन है? ये कोई नबी नहीं है, ये आम पब्लिक में से है, आम लड़के हैं। सोचें आप जरा, हम जब बात करते हैं ना तो हम कहते हैं हाय वो उनके तो वो तो नबी थे, हम तो कोई आम। आप इस कुरान के अंदर देखिए, आपको वो मिसालें भी मिलती हैं जो आम इंसानों की हैं, जो हमारे जैसे सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोग थे। और वो भी कोई ऐसे नहीं थे वो कोई बेचारे फकीर कभी गरीब थे तो अब उनके पास क्या था, नहीं, बहुत रिच थे, सब लग्जरीज उनके पास थी, उनके पास भी आसाइशें थी जो उस जमाने की थी, जो उस वक्त की बड़ी चीजें समझी जाती थी, वो सारी नियमतें उनके पास थी। तो उस वक्त में जब उन्होंने स्टैंड लिया तो अल्लाह ने उनके दिल को बांधा, ठीक है? तो जब दौरे फितन होगा ना तो इंसान कितना घबराएगा बताएं? आज भी हमारे दिल घबराते हैं, हमारे दिल उड़ते हैं, अल्लाह हम कैसे फितनों का मुकाबला करें? लेकिन अल्लाह ताला उसके दिल को ही बांधता है जो स्टैंड लेता है। और जो पानी के बहाव पे बढ़ता चला जाता है ना कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, चलो चलो सारे यही कर रहे हैं, चलो चलो तुम भी इधर ही चलते रहो, अगेंस्ट द वॉटर स्विम करना बहुत मुश्किल है। जिधर को पानी का बहाव उधर को जाना तो आसान है ना, आधा तो पानी ही आपको पुश कर देता है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस तरफ को चलना बड़ा आसान है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द लोग हैं, वो ही आपको पुश करके आगे चलाते रहते हैं। बात तो तब है कि कोई इंसान अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपनी कौम, अपने लोग, अगर वो अल्लाह ताला के खिलाफ चल रहे हैं, उसकी नाफरमानी में चल रहे हैं, शिर्क में चल रहे हैं, बिदतों में चल रहे हैं, उस वक्त कोई इंसान स्टैंड ले लेता है इस सारे के खिलाफ, बात तो तब बनती है। आज तो हमें इतना भी मुश्किल लगता है कि हम कहते हैं हाय मैंने हिजाब ले लिया, मेरे तो पूरी फैमिली में कोई हिजाब नहीं लेता, बड़ा मुश्किल है, बड़ा बड़ा ही मुश्किल है। हम कहते हैं किस दिन कोई आ जाए कि हम ये उतार ही फेंगे। हम कहते हैं अच्छा म्यूजिक के खिलाफ हमने स्टेप ले लिया कि हम ऐसी गैदरिंग्स में नहीं जाएंगे जहाँ पे म्यूजिक हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे तो पूरे खानदान में ऐसा कोई नहीं है और मैं ही सिर्फ हूँ। ये तो अभी हम बात कर रहे हैं उनकी, जो हमारे मुसलमान घराने हैं उनके अंदर भी हमारे लिए स्टैंड लेना मुश्किल होता है। कहाँ ये कि इन्होंने तो दीन ही बदल दिया था, सिर्फ अपनी फैमिली के से अलग नहीं हुए थे बल्कि पूरी की पूरी कौम में ये अजनबी थे। और जबकि इनके पास कोई नबी नहीं है, ये बात जहन में रखें, इनके पास कोई उस्ताद नहीं है, इनके पास कोई स्कॉलर नहीं है, इनके पास कोई मोटिवेशन के लिए नहीं खड़ा हुआ। हमें तो लोग कहते हैं कि वे मोटिवेट करें हमें, पहले हम मोटिवेट होंगे, ऐसी कुछ बातें करें कि हम मोटिवेट हो जाएं, जरा हमारा जोश आए, कोई बलबल आए, तो फिर हम कुछ करेंगे। इनको कौन समझाने वाला है? और हो सकता है दौरे फितन के अंदर जब दज्जाल आए तो हो सकता है, ये बहुत चांस है कि आपका जो सर्कल है, यहाँ खुदा ना खास्ता आपकी जो फैमिली है वो भी उसके पीछे चल पड़े, और हो सकता है कि आप बिल्कुल ही अकेले हो, तो क्या करेंगे तब? छोड़ देंगे सारा कुछ? मैं क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है, मैं तो अकेली हूं, मैं तो नहीं अकेली चल सकती ना, वो दुनिया को भी तो देखना होता है। उस वक्त अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढना होता है ताकि मिल के आगे चले, और वो चंद एक ही होंगे, वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे। दौरे दज्जाल के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि अक्सरियत ही अल्लाह वाली बन जाए, यही तो फितना है। और इतना समझ ही नहीं आना उसका, इंसान को लगेगा ये सही है, वो सही नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को भी इतना दज्जाल से महफूज रखे। तो ये मुश्किल वक्त जब आता है, उस वक्त जो स्टैंड लेता है उसके दिल को अल्लाह ताला फिर थाम लेता है, मजबूत कर देता है उसको। जैसे मैंने आपको ये मिसालें कुरान से दी है ना, तो वो भी बहुत मुश्किल टाइम थे, बहुत हार्ड टाइम थे, उस वक्त अल्लाह ताला ने दिल को बांध दिया। ए अल्लाह हमारे दिलों को भी बांध देना, हर फितने के दौर में हमारे दिलों को बांध देना। और दिल को बांधने से क्या होता है कि इंसान का दिल जम जाता है, फिर दीन से हटता नहीं है, फिर वो डाउट्स में नहीं पड़ता, फिर वो ये दीन के बारे में अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें नहीं करता कि आए तो फिर हम तो इतना दीन के पर चल रहे थे, हमें अल्लाह ने कैसे छोड़ दिया, अल्लाह तू कहाँ है, हम तो ईमान वाले थे, अब जी हमारे साथ क्या हो गया ये, या ये कि जी कयामत आएगी तो देखा जाएगा, अभी तो हम नहीं कर सकते ये, या ये तो नहीं आज के इस दौर के अंदर एप्लीकेबल, हम क्या करें फिर, क्या जिंदा ना रहे हम, ये नहीं फिर इंसान कहता। दिल का रबत जब हो जाता है ना, इंसान दलेर हो जाता है, फिर डरता नहीं है हक बात कहने से, फिर मुखालफत को जितनी भी हो उसको बर्दाश्त करता और चलता रहता है अल्लाह के रास्ते में, फिर लोगों की बातें उसको ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं करती, पर वो रेजिस्ट करता है, गिर नहीं जाता, फिर वो स्ट्रगल करता है, आगे बढ़ता है, घबराता नहीं है, इस्तकामत पा लेता है अल्लाह के रास्ते पे, नेकियों पे जम जाता है और जमा रहता है जब तक वो दुनिया से चला ना जाए। फिर वो जल्दबाज नहीं होता कि हाय क्यों नहीं मदद आ रही, हाय क्यों नहीं ऐसा हो रहा, हाय क्यों नहीं हमारे मसले हल हो रहे, क्यों हमारे ऊपर ये आफत आ गई है, हाय क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों हालात ऐसे हो रहे हैं। आज दुनिया में आप देखिए जुल्म इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा, और शामत ज्यादा मुसलमानों की आ रही है, उस वक्त किसी को डाउट ना होने पाए कि पता नहीं हम सही भी हैं कि नहीं, अगर हम सही होते तो अल्लाह हमारी मदद ना करता, नहीं। तो ये जब रबत आ जाता है ना, जब इंसान स्टैंड लेता है, तो तब ये अल्लाह दिल को बांध देता, फर्म कर देता, फिर इंसान को यकीन होता है कि अल्लाह की मदद जरूर आएगी, जुल्म की ये रात जरूर खत्म होगी। फिर इंसान उल्टे सीधे काम नहीं करता कि तखरीबकारी शुरू कर दे, वायलेंस पे उतर आए, या फिर बिल्कुल ही मायूस होके बैठ जाए, क्योंकि आप देखें यूथ ज्यादातर वो फिर वायलेंस पे उतर आती है। इन लड़कों ने ये नहीं किया कि कहीं जाके बम बांध के वो खुदकुश कम हमले करना शुरू कर दें, कहीं जाके कुछ और शुरू कर दें कि ये तो लोग हमारे जैसे हैं ही नहीं, तो हम तो इनको आज खत्म ही कर देंगे। देखिए ये चीजें हमें सबक देती हैं, फितनों के दौर में अपने ईमान को बचाना जरूरी है। तो हम कैसे दिलों को चाहते हैं अगर हम, के हमारे दिलों को भी अल्लाह ताला बांध दे तो क्या करें हम? सबसे पहले दुआएं करें, और रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बाद इज़ हदैतना, अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना इसके बाद कि तूने हमें हिदायत दे दी। फिर वो भी दुआ है अल्लाह हब्बिब इलैना ईमान, अल्लाह ईमान को हमारे लिए महबूब कर दे, महबूब कर दे, कितनी प्यारी दुआ है ना। वज़य्यिन वज़य्यिनहू फी कुलूबिना, अल्लाह इसको हमारे दिलों में मुज़य्यन कर दे। फिर आपको क्लास में बैठना बोरियत का सबब नहीं लगेगा, क्लास लंबी नहीं लगेगी, फिर दिल लगेगा जब अल्लाह दिल बांध देगा। फिर इसी तरह जो नेकी भी आप कर रहे हैं ना, उस पे जम जाए, जम के करें, बार बार नहीं कि कभी कुछ शुरू कर दिया फिर आओ अब तो मेरे से हो नहीं रहा, अब कोई और कोर्स शुरू कर दिया फिर वहां से नहीं हुआ, फिर कहीं और से, जब मुझे पहले पारे से शुरू करेंगे फिर मैं करूंगी, फिर आओ कहीं और से जा। कई लोगों को मैं देखती हूँ वो हर दफा कहीं ना कहीं पहले पारे से ही शुरू कर रहे होते हैं, नहीं जम जाए, फिर सुन्नतों का इत्तेबा करें। और चौथी चीज ये अल्लाह का जिक्र कसरत से करें। पांचवी चीज ये के फितनों के दौर में इतना इतना कुछ होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी कौन हक पे है कौन नहीं है, इतना कंफ्यूजन होगी ना, उस वक्त सलफ सालेहीन को फॉलो करना, जो अर्ली जनरेशन के मुसलमान है ना उनको फॉलो करें, सहाबा और ताबेईन को फॉलो करें, हर राह चलते को फॉलो ना करना शुरू कर दें। जैसे इब्ने अब्बास ने अपने शागिर्दों से फरमाया था कि निजात चाहते हो ना, अगर तुम सेफ रहना चाहते हो तो तुम अपने से पहलों को, अब इब्ने अब्बास किसको फरमा रहे हैं, अपने शागिर्दों को, अपने से पहलों को यानी सहाबा को फॉलो करो, जहां वो रुके वहां रुक जाओ, जो उन्होंने कहा वो कहो, जिससे वो बचे तुम भी बचो। तो ये भी एक काम करने का है कि आप अर्ली जनरेशंस को देखें, खुदा के लिए जो नए नए फलसफे लेकर आ जाते हैं, नई नई बातें लेकर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ, के इनको अब नहीं समझ आ रही है, जो सहाबा को नहीं आई थी इनको समझ आ गई वो बातें। इस तरह के बहुत सारे हैं जो बैठ के इस तरह, कभी वो उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर तो कितनी ऐसी वीडियोस मिली हैं, कोई कह रहा है ब्रिटिश एम्पायर दज्जाल थी, कोई कह रहा है टीवी दज्जाल है, कोई कह रहा है ये फोन दज्जाल है, कोई कह रहा है क्या नाम है उसका, अमेरिका दज्जाल है, कोई कोई कुछ मतलब बेसरोपा बातें, जिनका कोई सर ना पैर। आप सर हमने बता दिया वो एक आदमी होगा, वो कोई हदीसे नहीं पता, हदीसे भी सारी एक तरफ रख दी खुद ही अपनी, कभी किसी के ऊपर चिपका दिया दज्जाल का, कभी किसी के ऊपर चिपका दिया, कभी ये बता दिया ये इमाम महदी है, फलां महदी फलां महदी, फलां हदीस जो है ना ये इसके ऊपर फिट आ रही है, फलां उसके ऊपर फिट आ रही है, खुद ही करते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जबकि महदी जब आएंगे ना उनको खुद भी नहीं पता होगा कि मैं ही महदी हूँ, या वो पता। तो और अगली बात ये कि सालहीन की सोबत में खुद को रखें, उनके साथ रहें। ये देखें, ये जैसे इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था, ये आपस में मिलके बैठते थे, मुजाकरा करते थे, अपने जैसे लोग ढूंढे। तो यहां से ये पता चलता है कि देखें इंसान तो थे ना, और इंसान है तो उसके साथ ये सारी चीजें लगी, उनके भी दिल उड़ रहे थे, डर रहे थे, खौफ सताते, क्या यार अभी बुला लिया अब हमारा क्या बनेगा। तो अल्लाह ताला ने इनको मजबूत कर दिया। अब जब ये बादशाह के उसमें पहुंचे, तो बाज कहते हैं कि ये बादशाह के सामने उन्होंने कहा, बाज कहते हैं कि लोगों को उन्होंने कहा, फकालू तो उन्होंने कहा, सबके सब कहने लगे, रब्बुना हमारा रब तो वो है जो रब्बुस समावाती वल अर्द है, जो रब है आसमानों और जमीन का, लन नदवा मिन दूनी ही इलाहन, हम तो हरगिज नहीं बनाएंगे उसके अलावा किसी को इलाह, हम तो किसी और को इलाह नहीं समझते उसके अलावा, रब के अलावा। और फिर उन्होंने देखे कितनी बात के, अगर हमने ऐसा के ये नहीं कहा कि तुम लोग तो ऐसा करते हो, लकद कुलना इजन शता था, अगर हमने उसके अलावा किसी को इलाह बना दिया तो हमने तो बहुत झूठी बात की। तो उनको इंस्टिगेट नहीं कर रहे, उनको वो मतलब ऐसा नहीं कर रहे कि उनको गुस्से में लाएं कि तुम लोग तो इतनी झूठी बात कर रहे हो और ऐसे कर रहे, नहीं, हम अगर ऐसा करेंगे ताकि वो समझ जाएं कि वो तो ऐसा कर ही रहे हैं ना। तो ये खड़े हो गए, सोचें आप उस कोर्ट में या लोगों में भी अगर खड़े हो गए तो समझ लें कि ये कहना क्या मतलब रखता था, बगावत, क्योंकि ये दीन सारी पब्लिक का था, सारी कौम का था, और उस वक्त इसी को उनका समझा जाता था, यही उनकी मिल्लत है, आगे आएगी भी बात, लेकिन वहां पे खड़े हो जाना, डट जाना, कोई आसान बात थोड़ी है। हदीस में आता है, जालिम बादशाह के सामने कलमाए हक कहना अफसल जिहाद है, अफसल जिहाद है ये, कि जालिम बादशाह, जालिम हुक्मरान, जालिम हुकूमत हो, उसके सामने कलमाए हक बोलना। तो अब ये सोचें कौन से हालात में ये कह रहे हैं, जब सारी दुनिया एक तरफ है, अकेले खड़े हैं, और इनके सपोर्ट कोई ऐसी नहीं है कि कोई बादशाह इनकी सपोर्ट में, कोई लोग और इनकी सपोर्ट में, अब सारे क्या कहेंगे कि ये बागी हो गए, जाहिर है अब लोग तमाशा देख रहे हैं कि अब क्या होता है, अब बादशाह क्या फैसला देता है कि इनके लिए मौत की सजा है। तो वो जो सुभान अल्लाह, जो नर्वस हुए हुए थे, जो हिले हुए थे, खौफजदा थे, अल्लाह ने कैसे दिल बांध दिया कि इतने दलेर हो गए वही लोग कि हम तो नहीं किसी और को इला समझते, इला कौन होता है, इला वही होता है ना जिसकी आप इबादत करते हैं, जो आपके लिए जिंदगी में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है। उन्होंने देखें, एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करें कि तौहीद रबूबियत से तौहीद अलूहियत को साबित किया, रब तो सभी मानते हैं कि रब, रब मतलब क्या कि मालिक है, खालिक है, चलाने वाला है, पालने वाला है आसमानों जमीन का, सब कहते हैं, आप किसी के किसी से भी पूछ ले, मुशरिक से भी पूछ ले ना, वो भी कहता है हाँ एक ही है, वो एक है जिसको सारा कुछ चलाता है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त इबादत करने लगते हैं फिर उसके अंदर शरीक कर लेते हैं, और मुशरिकीन मक्का भी यही करते थे। ये कुरान में तौहीद रबूबियत से जब ये कहा जाता है ना, रब है आसमानों जमीन का, ये तो तुम भी मानते हो ना, फिर इसके अलावा क्यों किसी की पूजा करते हो? यानी फिर इलाह भी तो उसी को मानो ना, जब उसको रब मानते हो तो इलाह भी मानो। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, सब कहते हैं देना उसी ने है जी, हमें पैदा उसी ने किया है जी वो, फिर उसके बाद जाकर कहीं और माथे टेकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने जब पूछा ना कि तुम हमारे इलाहों को क्यों नहीं पूछते, तुम्हारे को क्यों नहीं कुछ समझते, तो उन्होंने कहा हमारा रब वो है, रब यानी हमारा भी वो रब है और आसमानों जमीन का भी वो रब है, और उसके अलावा कोई रब नहीं है, ये नहीं कहा उन्होंने, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। समझ आई बात? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम रब मानने में नहीं है, वो इसको नहीं एम्फोसाइज कर दे वो रब है तो हम उसके अलावा किसी को रब नहीं समझते, रब तो सारे ही उसको ही समझते हैं, हम उसके अलावा किसी को इलाह नहीं मानते। बात समझ आई है या नहीं? तो ये एक पॉइंट है जो यहाँ पे समझने का है, क्योंकि आप तबलीग करने बाज दफा जाते हैं तो आप ये लोगों को यही कन्विंस करते रहते हैं कि जी वो रब है, वो रब है, अरे वो तो रब मानते ही हैं उसको, आप उनको इस तरफ लेकर आए कि इबादत नहीं किसी और की करनी। और यहाँ पे नदउ का मतलब इबादत ही है, नाबुदु माना है कि हम इबादत करेंगे, हम पुकारना क्या है, तो दुआ जो है वो मुखल इबादा है, इबादत ही तो है दुआ, बल्कि उसका जिस्ट है क्या। तो अब ये बात वो कह के शिर्क से की नफी कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जो रब होता है वही इलाह होता है, वही इबादत के लायक होता है। जाहिर है जिसने, जो मालिक है, जिसने पैदा किया, वो उसकी पूजा करनी चाहिए ना, उसकी इबादत करनी चाहिए, कोई मुश्किल बात तो नहीं। सूरह बकरा में हम सबसे पहली जो बात अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को कही है, हुक्म दिया है, वो क्या है, या अय्युह नास अबुदू रब्बकुम लज़ी खलक़कुम, उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। लोगों, सिर्फ ईमान वालों नहीं, सारी इंसानियत, तुम तो उसकी क्यों नहीं इबादत करते जिसने तुम्हें पैदा किया? ठीक है, फला तजालु लिल्लाहि अंदादा भी कहा गया ना, उसके साथ किसी को शरीक करो, तुम्हें पैदा उसने किया है तो तुम उसके साथ, पैदा करने में तो कोई शरीक नहीं हुआ था, क्या किसी और ने भी पैदा किया? नहीं, तो फिर ये जुल्म क्यों करते हो कि इबादत के वक्त तुम दूसरों को पुकारना शुरू कर देते हो? इबादत का जब वक्त आता है तो, जब इबादत ही है यानी दुआ का वक्त आता है तो अजमेर शरीफ तुम्हें याद आ जाता है, गौसे आजम कहना शुरू कर देते हो, दाता साहब की तरफ भागते हो। तो हर हफ्ते सूरह कहफ पढ़ते हो, और ये नहीं समझ आती कि जो आसमानों जमीन को पैदा करने वाला है मैं उसको क्यों नहीं पुकारती? और याद रखें एक बात, ये सूरत में भी आएगा, जिसको दुनिया में पुकारते हो ना, जिससे दुआएं मांगते हो, तो कयामत के दिन भी उसी को ही पुकारोगे, फिर वो फिर काम नहीं आने। जाहिर है यहाँ पे उसको पुकारते तो वहां पे भी जाके उनको ही कहेंगे ना कि आप जी गौसे आजम आप हमारी यहाँ पे भी मदद करें, दुनिया में भी तो उसको पुकारते थे, वहां पे जाके एकदम तौहीद वाले नहीं बन जाओगे कि उठते ही वो तौहीद का आपको याद आ गया, ये नहीं होगा। तुम यहां पे देखो कि तुम किसको पुकारते हो इस दुनिया में, नोट करें आप, जब भी कोई मुश्किल आती है मुंह से क्या निकलता है, दाता साहब, हाँ, या अब्दुल कादिर जीलानी, क्या निकलता है? तो इस सूरत के एंड की तरफ जाके आप देखेंगे कि वहां पे उनको कहा जाएगा पुकारो ना उनको जिनको तुम पुकारते थे, वो वहां पे फिर मिलेंगे भी नहीं। हाँ, जो यहाँ पे भी अल्लाह अल्लाह को पुकारता है वो वहां पे भी उसी को पुकारेगा, और अल्लाह तो हय और कयूम है, और अल्लाह ताला वो जात है जो कभी छोड़ता नहीं, अगर आपने उसको थामा है ना वो कभी छोड़ेगा नहीं, ये यकीन रखें। क्यों नहीं उसको थाम लेते, उन सहारों को क्यों पकड़ते हो जो खुद कमजोर है, जो खुद अल्लाह की रहमत के मोहताज है, जो खुद बंदे हैं, उसको क्यों नहीं थामते जो रब है? तौहीद का ये दर्स है कि हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारते, और हमने तो पता नहीं पुकारने के लिए किस किस को बनाया हुआ अपनी जिंदगी में। अगर हमने किसी और को पुकारा तो हम तो बहुत झूठी बात कह रहे हैं फिर।